हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अंबिका बेचैनी से वेदांश के कमरे में आने का इंतजार कर रही थी। उसे पता था वेदांश और एक मेट के अलावा कोई वहां नहीं आता था। वो मेट भी दिन में एक दो बार ही आती थी अंबिका को खाना देने। वेदांश जब मन करता था आता और जब मन करता था चला जाता था। कमरे में घड़ी लगी हुई थी और बालकनी से बाहर देखकर दिन रात का पता चल जाता था, लेकिन इसके अलावा अंबिका को और कुछ नहीं पता चल पा रहा था। वो बहुत परेशान हो गई थी। एक ही जगह रहकर भले ही कमरा काफी बड़ा था, अंबिका वहां 100 से ज्यादा कदम गिन सकती थी, फिर भी उसे अब सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। इससे भी ज्यादा उसे अपनी फैमिली की चिंता हो रही थी। उसे नहीं पता था कि वे लोग उसे ढूंढ रहे होंगे या परेशान होंगे या सब ठीक भी होंगे या नहीं, खासकर उसका भाई अक्षय। अक्षय की उसे सबसे ज्यादा चिंता थी, क्योंकि ये सब कुछ उसी से जुड़ा हुआ था और उसी की वजह से शुरू हुआ था। ये सारे ख्याल उसके मन में आ ही रहे थे कि कमरे का दरवाजा खुला। अंबिका ने नजर उठाई और देखा वेदांश अंदर आया। अंदर आते ही उसने दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया था। वो हमेशा ऐसा ही करता था। वेदांश को देखते ही अंबिका बोली, मुझे अपनी फैमिली से मिलना है। वेदांश ने बिना किसी भाव के सीधे कहा, नहीं मिल सकती। उसकी तरफ आते हुए अंबिका ने सवाल किया, लेकिन क्यों? वेदांश ने फिर से उसी सपाट लहजे में कहा, क्योंकि मैं कह रहा हूँ। इस बार अंबिका गुस्से से बोली, मैं क्यों सुनूं तुम्हारी, तुम कौन हो? इस बात पर वेदांश को भी गुस्सा आ गया। वो एकदम अंबिका के नजदीक आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ। मुझे लगता है तुम्हें बहुत अच्छे से पता है और मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उसके इस तरह देखने पर अंबिका को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। उसने बड़ी मुश्किल से थूक निगलकर गला गीला करने की कोशिश की और अपना चेहरा थोड़ा पीछे करते हुए बोली, दूर दूर रहकर बात नहीं कर सकते क्या तुम? उसकी बात पर वेदांश ने धीरे से सिर हिलाया और उसके और ज्यादा नजदीक आने लगा। अंबिका हड़बड़ाकर अपनी जगह से पीछे हुई तो उसका पल्लू जमीन पर बिछे हुए कालीन में फंस गया। वो लड़खड़ाकर गिरने ही वाली थी कि दो मजबूत बाहों ने उसकी कमर पकड़ ली और उसे संभाल लिया। लेकिन गिरने के डर से अंबिका ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। जब उसे अपना शरीर हवा में ठहरा हुआ महसूस हुआ और अपनी कमर पर वेदांश की बाहें महसूस हुईं, तो उसने तुरंत आंखें खोलीं। वेदांत का चेहरा उसके चेहरे के एकदम सामने था। वेदांत के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने एकदम सर्द आवाज में कहा, नहीं भाग सकती तुम मुझसे दूर, इसलिए कोशिश भी क्यों करती हो? अंबिका ने उसका हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करते हुए घृणा भरे भाव से कहा, छोड़ो मुझे, हाथ हटाओ अपना, मुझे घिन आती है तुम्हारे इस तरह छूने से। अंबिका को सच में वेदांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो उसे अपनी फैमिली से नहीं मिलने दे रहा था। अंबिका नहीं चाहती थी कि वो उसे बार बार छुए या उसके करीब आए। जो कुछ भी एक बार उन दोनों के बीच हुआ था, वो सब वो किसी बुरे सपने की तरह भूल जाना चाहती थी। लेकिन तभी वेदांश की भारी आवाज उसके कानों में पड़ी, इससे भी ज्यादा, तुम्हारे कदम के हर एक हिस्से को हर जगह पर छू चुका हूँ मैं तुम्हें। भूल गई हो तो सोचा याद दिला दूं, और मैं कोई ऐरा गैरा राह चलता इंसान नहीं हूँ जिससे तुम ऐसे बात कर रही हो, अपनी हद में रहो। इतना बोलते हुए वेदांश ने अंबिका के गालों को दबाते हुए कसकर पकड़ लिया और गुस्से भरी नजरों से उसकी आंखों में देखने लगा। अंबिका ने उसका हाथ हटाने की कोशिश करते हुए कहा, हाँ तुमने मुझे छुआ है, लेकिन सिर्फ मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर। तुम्हें भी पता है, अगर तुमने मेरी फैमिली के नाम पर मुझे मजबूर ना किया होता तो मैं कभी तुम्हें अपने नजदीक ना आने देती। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों कर रहे हो तुम ऐसा, और क्यों मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहे हो? क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? वेदांश ने एक झटके से उसका चेहरा छोड़ा और उसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, सुकून, खुशी, तसल्ली, सब कुछ मिल रहा है मुझे तुम्हें ऐसे परेशान, बेबस और लाचार देखकर। और वैसे भी भूलो मत, इन सब की शुरुआत तुमने ही की थी। पहले तुम ही आई थी अपनी औकात भूल कर, अपने भाई का रिश्ता मेरी बहन के लिए लेकर, और उसके बाद दोबारा जब मैंने अपनी बहन की शादी कहीं और तय कर दी तो शादी के दिन भी तुमने यहाँ आने की हिम्मत की। और सिर्फ इतना ही नहीं, तुमने मेरी बहन की जान लेने की भी कोशिश की। तुम्हारी वजह से ही आज मेरी बहन हॉस्पिटल में है। वेदांश के इतने सारे इल्जाम सुनकर अंबिका की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वो एक तरह से सच कह रहा था। अंबिका इस वक्त खुद को बहुत ही ज्यादा असहाय महसूस कर रही थी वेदांत के सामने, और उसे पता था वेदांत उसे ऐसे देखकर इन सारी चीजों का आनंद ले रहा था, लेकिन इसके अलावा अंबिका ने कुछ भी नहीं किया था। जो कुछ भी इल्ज़ाम उस पर लग रहे थे वो सब गलत थे। अंबिका ने इस तरह मायूस चेहरे के साथ वेदांश की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, तुम्हें भी अच्छी तरह से पता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, और क्यों मारूंगी मैं तुम्हारी बहन को? मैं यहाँ सिर्फ अपने भाई को ढूंढने के लिए आई थी जिसे तुमने पकड़ रखा था, और अभी भी मुझे नहीं पता वो कहाँ पर है, सही सलामत है भी या नहीं। अंबिका की बात काटते हुए वेदांत गुस्से से चिल्लाकर बोला, नहीं आना चाहिए था तुम्हें यहाँ इस घर में, क्योंकि अब तुम यहाँ से निकल नहीं सकती जब तक मेरी बहन होश में नहीं आ जाती और वो ये बात कन्फर्म नहीं कर देती कि इन सब में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। जब तक तुम यहाँ पर ही रहोगी और तुम्हारी फैमिली भी तब तक ही सेफ रहेगी जब तक तुम यहाँ पर रुक कर मेरी सारी बातें मानती रहोगी, और तुम्हें चाहे जितनी भी घिन आए, चाहे जितना भी घृणित लगूं मैं तुम्हें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपनी मर्जी पूरी करके रहूंगा। और अगर तुम ये सोच रही हो कि वो सब कुछ सिर्फ एक बार के लिए था तो तुम्हारी ये बहुत बड़ी भूल है। मेरा जब मन जाएगा तब मैं तुम्हारे करीब आऊंगा और अपनी जरूरतें पूरी करूंगा, जो मेरा मन करेगा वो मैं करूंगा और तुम मुझे रोक नहीं सकती। इतना बोलते हुए वेदांश ने अंबिका को पीछे की तरफ एकदम से धक्का दिया। अंबिका संभल नहीं पाई, पीछे बेड था और वेदांत ने जानबूझकर उसे बेड पर ही धक्का दिया था। अंबिका एकदम बेड पर गिरकर लेट गई। वेदांश ने अपना कोट उतारकर साइड में फेंक दिया और सीधा उसके ऊपर आ गया। अंबिका को उठने का मौका नहीं मिला, वेदांत इस वक्त उसके ऊपर था। अंबिका ने डर और घबराहट से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। वो वेदांत की आंखों में नहीं देखना चाहती थी। उसने अपने हाथ की मुट्ठियां कसकर बांध ली और अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। नहीं, प्लीज नहीं, बहुत ज्यादा घृणित चेहरा बनाते हुए अंबिका ने अपनी आंखें बंद कर रखी थीं। उसे ऐसे देखकर वेदांत का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। वेदांत एकदम अंबिका के होठों पर अपने होठ रखकर उसे रफली किस करने लगा। इस वक्त वो बस अपना गुस्सा उस किस के जरिए निकाल रहा था, क्योंकि अंबिका ने अभी उसे इतनी सारी बातें सुनाई थीं और उसे कुछ भी सुनने की आदत नहीं थी। अंबिका ने अपने होंठ कसकर बंद कर रखे थे और वो उसे किस करने का मौका नहीं दे रही थी। तभी वेदांश ने गुस्से में उसके होंठों पर रफली काटा। अंबिका को बहुत तेज दर्द हुआ। वेदांश ने उसके निचले होंठ को काटा था। उसके ऐसा करने पर अंबिका के मुंह से दर्द भरी सिसकारी निकली और उसके होंठ हल्के से खुल गए।
इसी बीच वेदांश का हाथ उसके कुर्ते के बाजू से होता हुआ उसकी कमर पर था और धीरे धीरे अंदर जाता हुआ उसके पूरे शरीर पर हरकत कर रहा था। अंबिका ने अपना हाथ बीच में रखकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वेदांश ने उसके हाथ में अपनी उंगलियां फंसाते हुए उसके हाथ को पकड़ लिया और पीछे की तरफ कर दिया, जिससे अंबिका उसे रोक ना पाए। वेदांश ने अंबिका के दोनों हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अंबिका की कमर को पकड़ते हुए उसे बेड पर एकदम सीधा लेटा दिया और फिर उसी हाथ से अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा। अंबिका हिलते डुलते हुए खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अंबिका ने अपनी आंखें खोलकर वेदांश की तरफ देखा। उसने अपनी शर्ट निकालकर साइड में फेंक दी और दोबारा उसके ऊपर झुका। अंबिका ने लगभग विनती करते हुए कहा, क्या कर रहे हो तुम, क्यों कर रहे हो ये, प्लीज प्लीज रुक जाओ। उसकी आंखों में देखते हुए एकदम गंभीर और गहरी आवाज में वेदांश बोला, बोलने से पहले सोचना चाहिए था तुम्हें। घृणित लगता हूँ ना, तो बस घृणित हरकतें कर रहा हूँ जिससे कि तुम्हें मैं और भी ज्यादा घृणित लगूं, और भी ज्यादा नफरत हो जाए तुम्हें मुझसे, और भी ज्यादा घिन आए तुम्हें मेरे करीब आने से, और वो सब कुछ तुम्हें सहना पड़ेगा। इतना बोलते हुए वेदांश अपना चेहरा उसकी गर्दन के एकदम करीब लेकर आया और उसकी गर्दन पर भी उसी तरह रफली काटते हुए किस करने लगा। अंबिका को आज सिर्फ और सिर्फ दर्द का एहसास हो रहा था और कुछ भी नहीं। क्रमशः ओके, तो क्या इन दोनों के रोमांस बेड सीन को अगले एपिसोड में कंटिन्यू करना चाहिए? चलो, अगर 10 लोगों के कमेंट आए तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर नेक्स्ट सीन से शुरू होगा। आप लोगों के हाथ में है। और आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया या नहीं? वैसे अंबिका कोई मौका नहीं छोड़ती है वेदांश को गुस्सा दिलाने का। क्या लगता है आप लोगों को, वेदांश सही कर रहा है या गलत? वैसे तो वो गलत ही है, बाकी आगे देखेंगे।